ओम शांति। सबसे पहले हम सभी की क्या इच्छा होती है कि मुरली हमें याद रहे, है ना। मुरली याद रहे, क्यों भूल जाती है मुरली? मुरली हो या कोई भी चीज, है ना। कई बार लोग मोबाइल यहाँ रखते हैं और ढूंढते कहीं और है, चश्मा कहीं और रखते हैं ढूंढते कहीं और है। कई लोग तो हाथ में ही पेन लेके पेन ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ पेन है। क्यों होता है ऐसा? तो इसीलिए कहते हैं, जब कोई छोटे बच्चों को भी कोई काम देते हैं या कुछ करने के लिए, तो क्या कहते हैं? ध्यान से करना अर्थात मान लो आप मोबाइल रख रहे हैं अपना, जैसे यहाँ टेबल है बगल में, आप मोबाइल उठाए ऐसे रख रहे हैं, आपने मोबाइल उठाया ऐसे रख दिया केवल, और यहाँ बात कर रहे हैं, फिर आप चल दिए, तो आपको भूलने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन यदि आपने मोबाइल उठाया और टेबल पर रखने के लिए मोबाइल जैसे आप ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, रखते हुए उसको देख रहे हैं, बाय द वे आप भूल भी गए ना, फिर तो आपको याद रहेगा मैंने मोबाइल वहां रखा था। क्यों? क्योंकि आपने इसी को ध्यान कहेंगे, ध्यान से आपने देखते हुए रखा ना, देखते हुए रखा इसको कहेंगे ध्यान से, और ऐसे ही रख दिया तो ये लापरवाही की आदत होती है। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु भी अगर आप रख रहे हैं, उसको जब रख रहे हैं ना, कहीं भी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो उसको देखते हुए रखिए, यहां मैं रख रहा हूं, यहां रखा, उसको देख लीजिए। तो एक तो भूलने की चांसेस नहीं है, और अगर भूली भी वो चीज तो फिर याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा है। इसी प्रकार मुरली भी जब हम सुनते हैं ना, केवल मुरली हमने शब्द सुन लिए, शब्द सुने, अच्छा बाबा ने ये कहा, बस वो भूल जाएगी मुरली भूल जाएगी। मुरली अगर याद करना चाहते हैं हम, या कोई भी बात, तो क्या करें? पहले उसको क्या करें? देखें। जिसको बाबा ने एक मुरली में बताया है कि मुरली कैसे सुनो, रियलाइज करते जाओ। रियलाइज मीन्स उसको देखते जाओ। जैसे मान लो, जैसे आज बाबा ने कहा, तो आज इसको हम कैसे सुनेंगे तो मुरली याद रहेगी। जैसे बाबा ने कहा कि सुबह, है ना, सुबह उठ करके ही, सुबह सुबह ही क्या करो, क्या करो, चिंतन करो, चिंतन करो। क्या चिंतन करो? मैं आत्मा हूं। तो अब क्या करेंगे? आत्मा सामने, अब जब बैठे ना, जब सुन रहे तो सामने आत्मा देखो, बिंदु पहले दिखाई दे आत्मा, है ना, सामने बिंदु दिखनी चाहिए, ठीक है। अब आपने सामने बिंदु देखा, दूसरा क्या है? यहां आपने सामने देखा बिंदु, जब बाबा ने कहा आत्मा, बिंदु देखा। दूसरा क्या है? शरीर, शरीर को भी देखो, है ना। अब आत्मा के लिए बाबा ने क्या कहा? जो बिंदु आत्मा है, अब इसके बारे में ही आपको चिंतन करना ना, जो बाबा कह रहे हैं मुरली में, क्या कहा? बिंदु क्या है ये, क्या है? एक तो सब अति सूक्ष्म है, इतनी छोटी है, और इतनी छोटी जो बिंदु है आत्मा, किसको चला रही है? शरीर को भी चला रही ना, इतने बड़े शरीर को भी। तो सामने शरीर भी दिखाई दे, सामने शरीर और यहां बिंदु आत्मा। तो बिंदु आत्मा को आपने देखा, अब इसमें क्या है? आत्मा में क्या भरा हुआ है? अविनाशी पार्ट। तो इस आधार पर अगर देखते जाएंगे ना, जैसे आपने कहा केवल बाबा, तो बाबा केवल कहा तो शब्द है, लेकिन बाबा कहते ही आपने बिंदु रूप में देखा, परम धाम में देखा, तो एक्चुअली इसको कहेंगे बाबा। ऐसा तो केवल शब्द हो गया, तो ये देखना है हमें, है ना। तो इसी प्रकार क्या देखेंगे हम? कि मैं इतनी सूक्ष्म आत्मा हूं, बिंदु सामने देखें, और इसमें अविनाशी पार्ट मुदा हुआ है, और इतनी छोटी आत्मा इतने बड़े शरीर को क्या कर रही है, चला रही है। तो ये इसकी विशेषता ना, तो इसके बारे में ये केवल कहने से तो नहीं होगा, 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके जब इसके बारे में चिंतन करते हैं, इसको देखते हैं, तो क्या होता है, एक तो होता है कि जब हम आत्मा समझते हैं, बिंदु समझते हैं, बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं, तो ये क्या करता है हमारे लिए, किसका काम करता है, ये कवच है ना, ये हमारी रक्षा करता है माया से, जो वरदान में आज बाबा ने कहा ना, ये क्या करता है माया से रक्षा करता है, ढाल बन जाता हमारी, माया से हमें बचाता है। लेकिन इसी को जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, है ना, स्वमान जिसको कहेंगे, जब वो करते हैं ना, तो शस्त्र बन जाता है, हम बचते नहीं है बल्कि हम वार कर देते हैं माया के ऊपर। एक है हम खुद छिप गए, कोई आ रहा है दुश्मन, हम छिप गए बच गए, एक एक लेवल है। दूसरा लेवल क्या है, हम बाहर निकल के दुश्मन को भगा देते हैं चाहे हरा देते हैं, इसको कहेंगे स्वमान। स्वमान ये काम करता है, और आत्मिक स्थिति ये हमको बचा देता है। और अगर हम देह भान में देह समझते हैं तो तब तो हम क्या होता है, उसी में फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि बाबा को क्या प्रैक्टिस नहीं है, और क्या प्रैक्टिस है, बाबा को इस शरीर को सजाने की प्रैक्टिस नहीं है, ये काम ही नहीं करते बाबा। बाबा क्या करते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, किसको, आत्मा को। तो वास्तव में कहिए, अगर आत्मा सजती है, आत्मा का श्रृंगार होता है, तो शरीर का ऑटोमेटिक ही श्रृंगार जैसे हो जाता है। देखो कोई पावन आत्मा है, कोई पवित्र आत्मा है, कोई प्योर आत्मा है, बहुत प्योर आत्मा है, तो उसके शरीर को कोई देखता है क्या, उसका प्रभाव कितना ज्यादा होता है, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना कि जब आत्मा प्योर बनती है, जब आत्मा प्योर बनती है, तो उसके शरीर का भी वैल्यू बढ़ जाता है, है ना। जैसे देखो सतयुग में है, सतयुग में देवी देवता है, आत्मा पवित्र है, तो उसका शरीर भी कैसा होता है ना। दूसरा बाबा ने क्या कहा कि जो अविनाशी अविनाशी आत्मा है, तो अविनाशी आत्मा का किससे कनेक्शन है, अविनाशी आत्मा को जो है अविनाशी बाप पढ़ाते हैं, है ना, अविनाशी बाप जो है अविनाशी आत्मा को पढ़ाते हैं। लेकिन दुनिया में जो है, दुनिया में क्या है, जो शरीरधारी हैं, है ना, विनाशी शरीरधारी, जो विनाशी शरीर के नशे में हैं, विनाशी शरीर के भान में हैं, उनको पढ़ाने वाले कौन है, विनाशी, है ना, विनाशी ज्ञान वाली आत्माएं, है ना, दुनियावी ज्ञान वाली आत्माएं पढ़ाती हैं। वो थोड़ी ना समझती हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा को हम बता रहे हैं, वो तो देह देख करके ही पढ़ाते हैं, देह को ही समझाते हैं, और सुनने वाले भी अपने को देह समझकर ही सुनते हैं ना। तो इसीलिए इसका हम प्रैक्टिस, केवल एक कहने से नहीं होगा, हमने मुरली सुन लिया, सारी मुरली आपने सुन लिया, दो बार भी पढ़ लिया, तीन बार भी पढ़ लिया, ठीक है, उससे भी हमारी कॉन्शियस चेंज होती है, लेकिन मुख्य है प्रैक्टिस। जो हम मुरली सुन रहे हैं, कोई एक भी पॉइंट ले लिया, बाबा ने कहा सारी मुरली है, ये तो भगवान के महावाक्य है, कहीं भी प्रभावी है, लेकिन कोई एक पॉइंट भी आपने लेके पूरे दिन भर उसी पर चिंतन किया, पूरे दिन भर उसको अभ्यास किया, तो बाबा ने कहा फिर वो आपका हो जाता है, नहीं तो बाबा का है, आपका नहीं हुआ। कब होगा, जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए जब इस मुरली का हमको अनुभव करना है, मुरली भूले नहीं, तो ये जो बाबा से हमने सुना इसको देखें, है ना, पहले अपने को फील करें, मैं बिंदु आत्मा हूं और मैं शरीर से कैसे डिफरेंट हूं, और मैं कैसे शरीर को चला रही हूं, आंखों को कैसे यूज कर रही हूं, कर्मेंद्रियों को कैसे यूज कर रही हूं। तो इसे बैठ करके, मान लो आप बैठ गए 2 मिनट 5 मिनट, आप निहारते हैं वास्तव में, अपने को देखते हैं बिंदु रूप में, मैं कैसी हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, फिर इसी में हम चेक करेंगे, कोई हमसे अकर्तव्य तो नहीं हुआ, इसी में चेक भी करेंगे इस आत्मा को। तो जब हम इस आधार पर देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये धीरे धीरे स्वरूप हो जाएगा हमारा। ये क्या होता है, जैसे देखो कोई भी चीज है, आग है ना, आग के ऊपर अगर आग यहाँ जल रही है, हम यहाँ हैं, तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। मान लो आग है, उसके ऊपर हमने हाथ रख दिया, ऐसे हाथ रख दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्मी हमारे हाथों में आएगी, आग आते आते फिर पूरा गर्म हो जाएगा ना। मान लो बर्फ के ऊपर हम हाथ रखें तो कितना देर तक रख पाएंगे, एक सीमा है, थोड़ी देर तक रखेंगे, धीरे धीरे इतना ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्या किया हमने, तो कुछ नहीं किया हमने, केवल बर्फ पे रख दिया, बाकी काम बर्फ ने खुद किया हाथ के साथ। इसी प्रकार से बुद्धि का भी वर्क है, हमको करना क्या है, हम बुद्धि जहां लगा देते हैं ना, हमारा स्वरूप वैसा ही हो जाता है। हम जिस चीज के बारे में जैसा सोचते हैं, जितना देखो कोई बच्चा है, मान लो वो क्रिकेट मैच चल रहा है, वो मैच देख रहा है, और उसी समय कोई ऐसे कमेंट्री है या लास्ट में चल रहा है कि अभी 7 बॉल हैं, 13 रन बनाने हैं, लास्ट विकेट है, चौदह विकेट, तो बच्चा उसमें इतना गुमसुम होगा, इतना खोया हुआ होगा, उसी समय उसकी माँ आके बोले बेटा जरा ये करना, वो क्या कहेगा, मालूम नहीं है कितना इम्पोर्टेंट समय चल रहा अभी, हाँ कितना मुश्किल, कितना टफ टाइम है। क्यों, क्योंकि उसमें खोया हुआ है, उस समय खो गया, उसका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो बुद्धि जैसे, मान लो बुद्धि हमारी क्या है, इसी प्रकार बुद्धि जैसे हमारा हाथ है ना, इसी प्रकार हो गया, हमारे हाथ भी हमारे कभी गंदे होते हैं, हम क्या करते हैं, डस्ट लगा तुरंत हम धुलाई करते हैं पानी से। अभी बुद्धि में भी हमारे कोई ऐसी चिंतन आई, कोई ऐसी बात आई, तो बुद्धि को भी तो धुलाई करना है। बुद्धि को कैसे धुलाई करेंगे, कैसे धुलाई करेंगे, विचारों से, विचार के आधार पर। अगर हम गंदे विचार हैं, हमारी बुद्धि कलुषित होगी, अच्छे विचार हैं, बुद्धि शुद्ध होगी। इसी प्रकार जब हम परम धाम में, देखो आप परम धाम में बिंदु बाबा है, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब बाबा को याद करते हैं तो आप भी बिंदु बन के याद करो बाबा के पास। दो बिंदु देखो, एक बिंदु नहीं, एक बिंदु देखेंगे तो योग टूटेगा, तो दो बिंदु देखो, और जब दो बिंदु आप देखेंगे तो क्या होगा, अब ये बिंदु और बिंदु से जुड़ गए तो क्या होगा, जैसे बर्फ से ठंडक हाथों में आई, अग्नि की गर्मी भी हाथों में आई, इसी प्रकार जो बाबा में शक्ति है ना बिंदु में, तो बिंदु से बिंदु में ट्रांसफर होना बहुत इजी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बाबा की याद में बैठते हैं कुछ समय तक, बाद में क्या होता है, कितना शांत, कितना कूल, हरे के लिए राम, हरे के लिए दया। क्यों, क्योंकि जो बाबा के वर्चुज है ना, वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आने लगते हैं। तो करना क्या है, बस हमें बाबा के पास बैठ जाना है, बाबा के साथ रहना है, बाकी काम बाबा करेगा, बट तो बस हमें समय देना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि निश्चिंत है ना, निश्चिंत भाव का है ना, हर व्यक्ति क्या चाहता है, निश्चिंत होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों नहीं पाता, क्योंकि हर एक की कुछ इच्छा है, कोई आवश्यकता है, वो सोचता है ये हो जाए ना फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, ये हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, चिंता। बाबा ने कहा सबसे बड़ी बीमारी क्या है, चिंता। और बाबा ने कहा इसकी दवा डॉक्टर के पास भी नहीं है, है ना, क्योंकि डॉक्टर तो देह का इलाज करते हैं, और चिंता कहाँ है, चिंता कहाँ है, आत्मा में, मन में। आत्मा का इलाज कहाँ से होगा, डॉक्टर्स के पास कहाँ से होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि निश्चिंत कौन बन सकते हैं, निश्चिंत, निश्चिंत भाव का। बाबा ने कहा ना निश्चिंत भाव का वरदान मिल जाएगा किसे, जिसे जो बुद्धि रूपी पांव है ना, बुद्धि रूपी पांव जो है उसको यदि माया हिला नहीं पाती है, माया आती तो है हिला नहीं पाती, अचल रहते हैं आप, तो बाबा ने कहा अगर ऐसी स्थिति है तो हमें निश्चिंत भव का वरदान मिल जाएगा। लेकिन ये इसमें बाबा ने क्या बताया, इसमें क्या होता है, कई बार माया रूप बदल करके आती है, आज इस रूप में माया आई, कल उस रूप में आएगी, अब सोचेंगे अभी हम परख गए हैं, अब इस हिसाब से माया आएगी ना, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन माया फिर और कुछ रूप बदल के आएगी फिर, है ना, कभी नाम, कभी मान, कभी शान, कभी इच्छा, कोई अनेक तरह से आएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो बुद्धि रूपी पांव है ना, ये अचल रहे, स्थिर रहे, तो इसका भी तरीका बाबा ने क्या बताया, इसका तरीका क्या बताया, कि बुद्धि रूपी पांव को माया हिला ना सके, इसकी विधि क्या बताया, सदा एक बल और एक भरोसा, है ना। ये भी बहुत मिस्टेक होती है कईयों से, कई क्या सोचते हैं, हम इनका ज्ञान, इनका क्लास सुनते हैं ना, हमको बहुत समझ में आ जाता है, इनका क्लास बहुत अच्छा होता है, ये जब हम किसी के क्लास की बात करते हैं ना, तो ये हमारी वही आदत है जो आधा कल्प से चली आ रही है, किसी से प्रभावित होने की बात है, क्योंकि पूरे कल्प में, चाहे पूरे यूनिवर्स में कहो, सबसे अच्छा पढ़ाने वाला कौन है, टीचर सबसे अच्छा कौन है, बाबा, बाबा जैसा तो कोई नहीं है, बाबा जितना सहज, बाबा जितना इजी, बाबा जितना श्रेष्ठ, पढ़ाई कोई पढ़ा ही नहीं सकता, बाबा जैसी विधि किसी के पास नहीं है। लेकिन हमको मुरली समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई क्लास कराता है तो हमको समझ में आने लगता है, तो ये क्या कहेंगे इसको, तो कोई भी अगर बात है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान हमें मुरली से मिले, कोई भी बात आई हमको तुरंत सामने बाबा दिखाई दे, बाबा से पूछे, अच्छा इसके बारे में बाबा ने मुरली में क्या कहा है, इसके लिए क्या समाधान है, बाबा पर बुद्धि हमारी जाती है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा हमेशा हमारी बुद्धि बाबा पर जाए, जिसको बाबा ने कहा सदा एक बल और एक भरोसा। तो अगर ये स्थिति है, हमेशा हम बाबा की तरफ देखते हैं, कोई मुश्किल भी आती है हम बाबा की तरफ देखते हैं, कोई भी हमारी जो हमारी खुशी की भी बात है उसका भी आधार बाबा है, इस आधार पर हम चलते हैं, तो एक तो हमको माया हिला नहीं सकती, दूसरा ऐसी स्थिति में बाबा ने कहा कि जो इस स्थिति में रहेगा, जो इसका अभ्यास करेगा, बाबा ने कहा उनको निश्चिंत भव का वरदान ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। नहीं तो क्या करती है माया, है ना, जैसे बाबा ने कहा ना, चिंता क्या करती है, चिंता इच्छाओं के पीछे भागेंगे आप, और वो क्या हो जाता है, बाबा ने कहा वो ऐसा ही है जैसे परछाई, परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं, तो इसीलिए इसका सहज तरीका कहते हैं आप अपने स्वमान में रहो, है ना, अपने में स्वमान में रहो तो क्या होगा, ये स्वतः पीछे पीछे चलेगी, हमको उसको पीछे चलने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारी बुद्धि का सहारा, हमारे बुद्धि का आधार केवल एक बाबा हो। तो इसीलिए जब आप मुरली सुन रहे हैं तो उस मुरली को देखते जाएं, उसको अनुभव करें, सतयुग में कैसी है आत्मा, तो सतयुग में भी आत्मा को देखो, जैसे यहां बाबा ने कहा कि यहां आत्मा है, बाबा ने कहा कि अभी जो हम ब्रह्मा मुख पंसावली हैं, इसके पहले हमारा जन्म कैसा था, वहां हम कैसे थे, अभी हम संगम युग पर कैसे हैं, ये पहले पेज पर इस तरह से बताया बाबा ने, सेकेंड पेज पर इस प्रकार बताया सतयुग में कैसे होंगे। तो इसी प्रकार देखेंगे कि ब्राह्मण जन्म से पहले हमारा कैसा था जीवन हमारा, और अभी कैसा है, और भविष्य में क्या बताया बाबा ने, भविष्य में क्या होगा, देव कुल होगा ना, दैवी कुल होगा, देवी देवताएं मां बाप होंगे, पिछला जन्म शूद्र कुल का था, अभी किसका कौन सा है जन्म? ईश्वरीय जन्म, सबसे श्रेष्ठ है ना। तो इसी के आधार पर महत्व है हमारे शरीरों का भी। अगर यहां हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा एफर्ट करते हैं, अगर आत्मा हमारी श्रेष्ठ बनती है तो जन्म जन्म के लिए हमको शरीर भी श्रेष्ठ मिलेगा। हमने आंखों को कैसे यूज किया है, हमने अपने कानों को कैसे यूज किया, अपने कर्मेंद्रियों को कैसे यूज किया है ना। तो इसीलिए इसका आधार ही क्या है, स्वरूप है ना। कहते हैं कि आप जिस स्वरूप में रहते हैं वैसा ही संस्कार हमारा बनने लगता है। जैसा स्वरूप, मान लो आप माँ समझते हैं अपने को, तो ऑटोमेटिक ही आपको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आप बच्चे की पालना करेंगे, उसको खिलाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपने माँ समझा, ये स्वरूप जो है आप। तो इसी प्रकार से जब हम ये समझते हैं ना, हम संगमयुगी ब्राह्मण है, ऑटोमेटिक हमारे कर्म कैसे होने लगते हैं? संगमयुगी ब्राह्मण समझते ही हमने अमृत बेला किया, हमने मुरली सुना, हम ऑटोमेटिक आपके सारे संकल्प कैसे चलेंगे? केवल जो ही आपने समझा मैं संगमयुगी ब्राह्मण हूं। इसी प्रकार जो ही आप समझते हैं, चाहे हम समझते हैं कि हम आत्मा है अति सूक्ष्म है ना, तो जो ही हम समझते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वाइब्रेशंस कैसे फैलते हैं, शांति हो जाती है ना चारों ओर। क्यों? तो इसको हम प्रैक्टिस करते जाएं, जितना भी टाइम मिले, 2 मिनट 5 मिनट। अब यहां देखें कि मैं यहां बिंदु हूं, फिर अपने शरीर को भी देखें, यहां का शरीर कैसा है, 5 तत्वों का बना हुआ पतित शरीर। अब इसी को सतयुग में जाएं, अभी हम अगर वहां आत्मा है तो कैसी आत्मा है, प्योर, हमारा शरीर भी कैसा वहां। फिर उसके बाद भी उतरती कला होने लगती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, ये सबका जो बाबा ने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप है बाबा ने कहा। इसीलिए कहा कि अभी भी कई बच्चों को मुरली समझ में नहीं आती है, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है, ज्ञान समझ नहीं पाते हैं, ज्ञान की धारणा नहीं होती है, बाबा की बातों को नहीं समझ सकते हैं। उसका कारण क्या बताया बाबा ने, उसका कारण क्या बताया, उसका कारण बताया बाबा ने कि भक्ति नहीं की अच्छी तरह से। बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से कौन समझ सकते हैं, जी हाँ, जिनकी भक्ति पूरी हुई है, जिन्होंने अच्छी भक्ति की है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि भक्ति की है तो समझ में आता है, भक्ति नहीं की है तो नहीं समझ में आता है ज्ञान, क्या कारण है? भक्ति करने से क्या हो जाता है जी? भक्ति का फल ज्ञान है, लेकिन क्यों, कैसे, भक्ति में क्या होता है, भावना होती है। क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं ना किसी के लिए भी, तो उसमें हमारी भावना बहुत श्रेष्ठ बनती जाती है। और किसी भी ज्ञान को समझने के लिए, सुनने के लिए, देखो आपके लिए किसी के लिए आपकी भावना नहीं होगी ना, तो कोई बात सुनाएगा भी ना तो आप सोचेंगे जल्दी से जाए यहाँ से, सुनने तो दूर की बात है। लेकिन आपका किसी के लिए बहुत स्नेह है ना, किसी के लिए बहुत भावना है, वो कोई एक बात कह देंगे ना वो सालों तक आपको याद रहेगा, उन्होंने मुझे ये कहा था। क्यों? क्योंकि उनके लिए भावना है। तो इसीलिए जो लंबे समय तक भक्ति करते हैं, तो भक्ति में क्या होता है, कोई एक घंटे की बात नहीं है, वो दिन रात उसी स्वरूप में रहते हैं, तो उनकी भावना इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी श्रेष्ठ हो जाती है। तो भावना की वजह से ये आत्मा तैयार हो जाती है ज्ञान समझने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन अगर भक्ति नहीं की है आत्मा तो क्या होगा उसको, उसको अपना ईगो होता है, अपना अहम होता है। तो जब अपना अहम होगा फिर बाबा के ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए कहते हैं जहां अहम तहां मैं नहीं, ऐसे करते हैं। तो इसीलिए मुख्य बात है भावना, भावना श्रेष्ठ है। अगर हमने लंबे समय तक भक्ति की है तब हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और इस ज्ञान को अभी नहीं समझ पा रहे हैं कोई, तो क्या करें, फिर से भक्ति शुरू कर दें, क्योंकि भावना श्रेष्ठ हो जाएगी ना, तो भक्ति करना चाहिए ना, फिर क्या करें। तो बाबा ने कहा अभी क्या करना है, अभी हमें ज्ञान कब समझ में आएगा, हम जितना जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे ना, जितना जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा देखेंगे, चाहे बाबा को भी, तो क्या होगा, जितना जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे हम बाबा के ज्ञान को उतना एक्सेप्ट कर पाएंगे, उतना एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको जितना समय मिले, जैसे हम वो भक्ति करते थे, यहाँ उसी प्रकार की प्रैक्टिस ये है कि जब हम बैठें थोड़े समय, हम देखें अपने को बिंदु रूप में, अपने सामने ही आप देख सकते हैं, मैं बिंदु यहाँ हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा स्वरूप क्या है।